दानियेल चौथा भाग। नबुकद नसर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए, जो तमाम रुए जमीन पर सुकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजायब को जाहिर करूं जो खुदा ताला ने मुझ पर आश्कारा किए हैं। उसके निशान कैसे अजीम और उसके अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी ममलकत अबदी ममलकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त। मैं नबुकद नजर अपने घर में मुतमिन और अपने कसर में कामरान था। मैंने एक ख्वाब देखा जिससे मैं हरासान हो गया, और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए मुझे परेशानी हुई। इसलिए मैंने फरमान जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हजूर हाजिर किए जाएं, ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करें। चुनाचे साहिर और नजूमी और कसदी और फालगीर हाजिर हुए, और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान ना की। आखिरकार दानियेल मेरे सामने आया, जिसका नाम बेलतशज़र है, जो मेरे माबूद का भी नाम है। उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है। पस मैंने उसके रूबरू ख्वाब का बयान किया और कहा, ए बेलतशज़र, साहरों के सरदार, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में है और कि कोई राज की बात तेरे लिए मुश्किल नहीं, इसलिए जो ख्वाब मैंने देखा उसकी कैफियत और ताबीर बयान कर। पलंग पर मेरे दिमाग की रोया ये थी, मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि जमीन के वस्त में एक नहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बड़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची, और वो जमीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, और उसमें सब के लिए खुराक थी। मैदान के चिरिंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे, और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। मैंने अपने पलंग पर अपनी दमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूं कि एक निगहबान, हां एक कदूसी आसमान से उतरा। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो और उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बिखेर दो, चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों पर से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो। हां लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो, और वो आसमान की शबनम से तर हो, और उसका हिस्सा जमीन की घास में हैवानों के साथ हो। उसका दिल इंसान का दिल ना रहे, बल्कि उसको हैवान का दिल दिया जाए और उस पर सात दौर गुजर जाएं। ये हुक्म निगहबानों के फैसला से है, और ये उमर कदूसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान लें कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से अदना आदमी को उस पर कायम करता है। मैं नबुकद नजर बादशाह ने यह ख्वाब देखा है, ए बेलतशज़र, तू इसकी ताबीर बयान कर, क्योंकि मेरी ममलकत के तमाम हकीम मुझसे उसकी ताबीर बयान नहीं कर सकते, लेकिन तू कर सकता है, क्योंकि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में मौजूद है। तब दानियेल, जिसका नाम बैल तश्जर है, एक साथ तक सरासीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ। बादशाह ने उससे कहा, ए बैल तश्जर, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। बैल तश्जर ने जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावंद, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और उसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। वो दरख्त जो तूने देखा कि बढ़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और जमीन की इंतहा तक दिखाई देती है, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, जिसमें सब के लिए खुराक थी, जिसके साया में मैदान के चिरिंदे और शाखों पर हवा के परिंदे बसेरा करते थे। ए बादशाह, वो तू ही है जो बढ़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बड़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक। और जो बादशाह ने देखा कि एक निगहबान, हां एक कदूसी, आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो और उसे बर्बाद करो, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो, बल्कि उसे लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो, कि वो आसमान की शबनम से तर हो और जब तक उस पर सात दौर ना गुजर जाएं, उसका बखरा जमीन के हैवानों के साथ हो। ऐ बादशाह, इसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावंद के हक में हुआ है, यही है कि तुझे आदमियों में से हांक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा, और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा, और तुझ पर सात दौर गुजर जाएंगे, तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। और ये जो उन्होंने हुक्म किया कि दरख्त की जड़ों के कुंदा को बाकी रहने दो, उसका मतलब ये है कि जब तू मालूम कर चुकेगा कि बादशाही का इक्तदार आसमान की तरफ से है, तो तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। इसलिए ऐ बादशाह, तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकिरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर, मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। ये सब कुछ नबुकदनज़र बादशाह पर गुजरा। एक साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबले अजीम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो? बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ए नबुकदनज़र बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रहे और तुझे आदमियों में से हांक कर निकाल देंगे, और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और सात दौर तुझ पर गुजरेंगे, तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक्त नबूकदनज़र बादशाह पर ये बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहां तक कि उसके बाल उकाब के परिंदों की मानिंद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानिंद भड़ गए। और इन अय्याम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनज़र ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस अहियल कयूम की हमदो सना की जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी मुमलकत पुश्त दर पुश्त है और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अकल मुझ में फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया और मेरे मुशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी मुमलकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफजोनी हुई। अब मैं नबूकदनज़र आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीमो ताजीम करता हूं क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है।